ஓம் சாந்தி.
தேங்க்யூ சித்ரவன். ஆஜ் ஹம் ராஜ்யோ கா தீஸ்ரா கதம் ஹம் தேகேங்கே. ஆப்கோ பத்தாயா ஹோகா ராஜ்யோ கே தீன் கதம் ஹே, தீன் ஸ்டெப்ஸ் ஹே. தோ சப்ஸே பஹலா ஸ்டெப் ஜோ பஹலே தின் ஆப் சப்னே சம்ஜா அனுபவ் கியா வோ ஹே ஸ்வயம் கீ அனுபூதி, ஆத்ம அனுபூதி. மே ஆத்மா ஹூ யே சமஜ்னா ஔர் அனுபவ் கர்னா. செகண்ட் ஸ்டெப் ஹே பரமாத்மா அனுபூதி. பரமாத்மா கௌன் ஹே, கியா ஹே, உன்கே கர்த்தவ்ய கியா ஹே, வோ கல் கே சத்ர மே ஆப் சப்னே சுனா ஔர் சம்ஜா. தோ ஆஜ் தேர்ட் ஸ்டெப் ஹே ஆத்மா ஔர் பரமாத்மா கே பீச் மே கனெக்ஷன் கியா ஹே. க்யோங்கி யதார்த் கனெக்ஷன் அகர் நெய் ஜோட்தே ஹே தோ கனெக்ஷன் ப்ராப்பர் அகர் நெய் கனெக்ட் ஹோதா ஹே தோ ஜோ ஹமே அனுபவ் கர்னா ஹே வோ நெய் ஹோ பாதா ஹே. ஜேசே தோ வாயர்ஸ் ஜப் எலெக்ட்ரிக் வாயர்ஸ் ஜப் கனெக்ட் கர்தே ஹே தோ வோ ப்ராப்பர் கனெக்ட் ஹோனா சாஹியே நா. தோ வோ கனெக்ஷன் கேசே கிஸ் ரூப் சே ஹம் ஜோடே பரமாத்மா கே சாத் வோ ஆஜ் ஹம் சம்ஜேங்கே. சப்ஸே பஹலே யே சம்ஜேங்கே ராஜ்யோ கா அர்த் கியா ஹே. க்யோங்கி யே ஜோ மெடிடேஷன் ஹம் கர்தே ஹே யஹா உஸ்கா நாம் ராஜ்யோக ஹே. தோ யோக கா மத்லப் ஹே ஜோட், கனெக்ஷன், மிலன். வியோக கா அர்த் ஹே அலக் ஹோ ஜானா, பிச்சட்னா, செப்பரேட் ஹோ ஜானா. யோக அநேக பிரகார் கே ஹே. ஸ்தூல் சீஸ் ஜோ சீனி கோ தூத் மே மிலாதே ஹே வோ மில் ஜாதா ஹே தோ உஸ்கோ ஹம் செப்பரேட் நெஹி கர் சக்தே, வோ பி ஏக் யோக ஹே. ஜப் ஹம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சி கே சாத் ரேடியோ கோ யா டெலிவிஷன் கோ மிலாதே வோ பி ஏக் பிரகார் சே கனெக்ஷன் ஹே. மனுஷ்ய கா யோக வஸ்து ஔர் லோகோ கே சாத் ஹோதா ஹே. ஜப் ஹம் சுபஹ சே கிசி நா கிசி கோ யாத் கர்தே ஹே வோ பி யோக ஹே. ஹமாரா யோக ஃபிஜிக்கல் யோக நஹி ஹே, மென்டல். மன் சே கிசி கோ பி யாத் கியா வோ ஹே யோக. இஸ்லே கேதே நா யோக தா தோ ஹம் மிலே. க்யோ மிலே? யோக தா, கனெக்ஷன் கஹி நா கஹி தா தோ இஸிலியே ஹம் மிலே. தோ யோக பஹுத் படி சீஸ் நஹி ஹே. வோ கேதே நா பஹுத் காம்ப்ளிகேட்டட் ஹே, உஸ்கோ சமஜ்னா முஷ்கில் ஹே. நஹி, சஹஜ பாவ் மே அகர் கஹே யோக மானா யாத் ஹே நா. தோ ஹம் கின் கின் சீஸோ கோ யாத் கர்தே ஹே, கின் கின் சீஸோ கோ யாத் கர்தே ஹே? வஸ்து கோ யாத் கர்தே ஹே ஔர் லோகோ கோ யாத் கர்தே ஹே. கோய் பி அப்னி வஸ்து ஹோதே, கார் ஹே, பங்களோ ஹே, காடி ஹே, யே கர்னா ஹே, வோ கர்னா ஹே, உன் சீஸோ கோ ஹம் யாத் கர்தே ஹே ஔர் ஹம் ஜின்கே சாத் கனெக்டட் ஹே உன்கோ ஹம் யாத் கர்தே. பரிவார் வாலே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹே, சம்பந்தி ஹே, ஜோ பி ஜின்கே சாத் பி ஹமாரா கனெக்ஷன் ஹே உன்கோ ஹம் யாத் கர்தே ஹே. அகர் தேகா ஜாய் தின் பர் மே ஹம் யாத் கிஸ் கிஸ் கோ கர், வஸ்துவோ கோ ஹம் தோடா சா பாஜூ மே ரக்தே ஹே, க்யோங்கி அபி ஹம் யோக லகா ரஹே ஹே பரமாத்மா கே சாத் ஹே நா. தோ தீன் ஹே, வஸ்து கே சாத் யோக, வியக்தி கே சாத் யோக, ஔர் தீசரி பாத் ஹே பரமாத்மா கே சாத் யோக. வஸ்து ஔர் இன்சான் கே சாத் ஜப் ஹம் யோக லகாதே ஹே குச் ப்ராப்தி இத்னா நஹி ஹோதா ஹே, ஹே நா. வஸ்து தோ நான் லிவிங் பீயிங் ஹே தோ உஸ்ஸே தோ ஹமே குச் ப்ராப்தி நஹி ஹோதா. இன்சான் கே சாத் யோக லகானே சே பி குச் ப்ராப்தி நஹி ஹோதா, க்யோங்கி அகர் வோ வியக்தி உஸ்கே எனர்ஜி லெவல் அகர் லோ ஹே ஔர் ஹி ஹமாரா ஹமாரி எனர்ஜி ட்ரெயின் அவுட் ஹோ ஜாதா ஹே உஸ்கே சாத் கனெக்ஷன் जोड़ने से। तो आत्मा एलिवेटेड स्थिति का अनुभव, श्रेष्ठता का अनुभव नहीं कर पाती है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमात्मा की स्थिति हमेशा सर्वोच्च है, उनकी स्थिति कभी भी नीचे नहीं आता, हमेशा एनर्जेटिक है, हमेशा सर्वशक्तिमान है, हमेशा सर्व गुणों का सागर है। तो जब भी हम उनके साथ कनेक्ट किया, तब हम उन गुणों को और शक्तियों को हम महसूस करते हैं और उसको हम धारण करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए मुश्किल लग रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? भले आप 5 घंटे के फिल्म देखेंगे, वहां बोर फील नहीं करेंगे और फिल्म के साथ कनेक्शन, क्योंकि स्टोरी वहां है जो। और दूसरी बात, कोई भी चीज आपको पसंद आ रहा है, खेलना है या कोई भी चीज ऐसा पसंद आ रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें आपको बोरियत फील नहीं होता। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने में मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे जोड़ना है उसकी समझ नहीं है, है ना? तो कैसे जोड़े, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम ये समझना होगा, मन कहाँ कहाँ जाता है दिन भर में, किस किस को याद करती है। वस्तु को नहीं देखेंगे, लेकिन अभी व्यक्तियों को, किन किन व्यक्तियों को हम याद करते हैं सुबह से शाम तक। 4 लेवल के लोगों को हम याद करते हैं। सबसे पहला है जिनका परिचय है उनको हम याद करते हैं, जिनका परिचय ही नहीं है उनको कहां से याद करेंगे, है ना? यहां आए, लोगों से मिले, पता चला इनका नाम ये है, तो फिर याद करना इजी हो गया। जिनका परिचय है तभी हम उनको याद कर सकते हैं। और दूसरा है संबंध, जिनके साथ हमारा संबंध है उनको हम याद करते हैं। और तीसरा है जिनके साथ हमारा स्नेह है। संबंधी बहुत होंगे, है ना, फ्रेंड्स है, संबंधी है, पड़ोस जो भी है, बहुत सारे हैं। उनमें से खास कुछ लोग होंगे जिनके प्रति हमारा स्नेह ज्यादा है, उनको हम याद करते हैं, डीपर डीपर जाते जाएंगे, है ना। और चौथा है जिनके, जिनसे हमें प्राप्ति होना होता है, जिनसे कुछ मिल रहा हो, तो उनको हम बहुत याद करते हैं, है ना। तो इसको, ये जो 4 लेवल्स हैं, उसको परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके देखेंगे। सबसे पहला लेवल है बेसिक लेवल परिचय, है ना। परिचय होना जरूरी है कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो क्या परमात्मा का परिचय आपको मिल गया? हाँ या ना? परिचय मिल गया? परिचय है परमात्मा का आपको? थोड़ा सा, कल तो सेशन सुना होगा ना आप सबने, परमात्मा के बारे में परिचय मिला, कौन है परमात्मा? क्योंकि इतने सारी बातें हैं परमात्मा को लेकर के, तो बहुत कंफ्यूजन है परमात्मा के बात लेकर के। तो इसीलिए सिंपल है, क्योंकि सर्वधर्म, 5 बातें कल आपने सुना ना, सर्वधर्म माननीय होना चाहिए, सर्वधर्म वाले उनको मानना होगा, वो परमात्मा है, वो सर्वोच्च होना चाहिए और सर्वज्ञ है और वो दाता है, है ना। तो वो तभी हो सकता है वो जब बिंदी है। परमात्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप है, तभी वो सर्वधर्म माननीय हो सकते हैं। एनर्जी है, प्रकाश है, है ना। तो हिंदू धर्म वाले शिवलिंग के रूप में याद करते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह नूर के रूप में याद करते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट के रूप में याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वधर्म में वो लाइट, वो प्रकाश, वो नूर को याद करते हैं। तो वो परमात्मा प्रकाश का पुंज है, है ना। ये परिचय इजी है, मुश्किल नहीं है। परमात्मा को समझना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि वो हमारा कौन है, हमारा कौन है, पिता है, है ना। तो इसीलिए वो इजी है। लेकिन अनुभव, जितना जितना हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, वो फिर पक्का होता जाएगा। तो परिचय के लिए ये परिचय लेकर के हम चले कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, प्रकाश का पुंज है, है ना। और नेक्स्ट लेवल जो है संबंध जोड़ने का, संबंध है ना? संबंध परमात्मा के साथ कैसे जोड़े, कौन से संबंध जोड़े परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ आपका संबंध क्या क्या है? भक्ति मार्ग में हम केवल परमात्मा को भगवान, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, बहुत एक ऊंचा स्तर भगवान को दिया है भी। ऊंचे ते ऊंचा उनका नाम, ऊंचे ते ऊंचा उनका धाम है, वो सर्वोच्च है ही है। लेकिन फिर कनेक्शन में क्या बोला, हम, मैं आपके चरणों के धूल हूं। इतना फासला हो गया, परमात्मा तो सर्वोच्च है लेकिन मैं तो बहुत नीच हूं। तो इतना फासला होने के कारण से वो कनेक्शन जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा है। लेकिन भले हम इस जन्म में कितने भी गलतियां की है, कितने भी पाप कर्म किए हैं, लेकिन ओरिजिनली आत्मा कैसे हैं? ओरिजिनली आप कौन हैं? ओरिजिनली आप आत्मा कैसे हैं? प्योर, शुद्ध है ना, शांत स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वो सात गुण आपने समझा ना आत्मा के। ओरिजिनली आत्मा वो सातों ही गुणों से भरपूर है, 100%। वहां कोई भी परसेंटेज नहीं, 100% गुणवान, भरपूर, शुद्ध है ना। जब मैं ये समझूंगी कि मैं आत्मा ओरिजिनली शुद्ध हूं, तो फिर कनेक्शन जोड़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो वहां फासला नहीं है। ओरिजिन वो वास्तविकता है और रियलिटी है, हम उसको हम इमेजिन नहीं कर रहे। आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है ना, तो वो फिर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना इजी होगा, है ना। और सर्व संबंधों के साथ मेरा कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा मेरे पिता भी है, माँ भी है, टीचर है, सदगुरु है, फ्रेंड है, स्वामी है, गाइड है। सर्व संबंधों के साथ परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? केवल हम ये सोचे परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ज्योति बिंदु है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के बीच में हूं, मैं उनको याद कर रही हूं, वो फिर सर्वशक्तियों की अनुभूति मेरा मुझे हो रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। क्यों? संबंध जोड़ना यहां जरूरी क्यों है? केवल हम गुणों के आधार से क्यों नहीं परमात्मा को याद कर सकते? संबंध जब जुड़ता है, फीलिंग्स जुड़ती है। संबंध के बिना फीलिंग्स नहीं जुड़ेगी, है ना। रास्ते चलते अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, अनजान व्यक्ति है, स्ट्रेंजर है, अगर मैं चल रही हूँ फुटपाथ पर, लेकिन अचानक दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, मानवता के आधार से मैं थोड़ा बहुत जाकर के मदद कर लिया, जो भी हॉस्पिटल पहुंचाना था, जो भी करना था कर लिया, दो चार दिनों के बाद उसको मैं भूल गई, है ना, क्योंकि वहां मेरा फीलिंग्स नहीं जुड़ा हुआ है, वहां मेरा कोई संबंध नहीं है, है ना। वही अगर कोई मेरे बहुत निकट के संबंधी, कोई ऐसे फ्रेंड है या फिर फैमिली मेंबर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत उनको फ्रैक्चर हुआ, जो भी बहुत हुआ, भले उनको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, फिर बाद में उनके साथ रोज जाते रहेंगे, ठीक है क्या है पूछते रहेंगे लंबे काल तक, वहां इमोशनल कनेक्शन है, इसीलिए उनकी फिक्र है, राइट। कहां, जहां इमोशंस है, फीलिंग्स है, वहां कनेक्शन थोड़ा गहरा हो जाता है। इसीलिए परमात्मा के साथ जब पर सर्व संबंध जोड़ते हैं, वहां फीलिंग्स के साथ हम जुड़ रहे हैं, फीलिंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाएगा। आजकल इमोशनल इम्बैलेंस क्यों है लोगों में, सब संबंधी होते हुए भी अकेले महसूस कर रहे हैं, सब रिलेटिव्स है, मात पिता, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सभी है, होते हुए भी वो डिटैच महसूस करते हैं, वह कनेक्शन ही नहीं है, इसीलिए जहां कहा ना कहा इमोशनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन में जा रहे, इमोशनल जो भी बीमारियां हैं, संबंध कम होने के कारण से ये इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भले इंसानों से भले मिले या ना मिले, हम हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार इंसान से तो नहीं मिलेगा, मैं सोचती हूँ कि इससे प्यार मिले, इससे रेस्पेक्ट मिले, ये मिले वो मिले, लोगों से नहीं मिल सकता है जो मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार, यहां से खींचने के बजाय, खींचने से नहीं मिलेगा ना, तो क्या करना है, डाइवर्ट करें, डाइवर्ट करके मैं जो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती हूं वो तो अनलिमिटेड है, वो अथाह है, कनेक्शन जोड़ते ही मैं उस गुण और उस शक्ति को अनुभव करना शुरू करती हूं, और परमात्मा 24/7 अवेलेबल है, मुझे जब जोड़ना है वहां उपस्थित है। ऐसा नहीं को कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आओ, दो घंटे के बाद आओ, नहीं, ये हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए सर्व संबंध अगर देखा जाए, पिता से क्या मिलता है, पिता से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, पालना मिलती है, रिकग्निशन मिलता है, संसार में समाज में रिकग्निशन मिलता है, इसका बेटा है इसकी बेटी है, एक पावर मिलता है, एक प्रकार से सिक्योरिटी मिलता है, पर पिता के संबंध से। जब मैं समझती हूँ कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, तो फिर एक प्रकार से सिक्योरिटी है, पावर वो मिल रहा है ना। और माँ के संबंध से, माँ के संबंध से शांति, एकदम वो बच्चा माँ के गोद में जाकर के निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, मेरे वो जज नहीं करेगी माँ। बच्चा कितना भी बुरा काम करे, कितना भी ये करे, फिर भी उसको तो समझा करके वो अपना लेगी, लेकिन कोई और अपना नहीं सकता। नॉन जजमेंटल प्यार माँ का होता है, तो वो जो प्यार है, परमात्मा भी नॉन जजमेंटल है, मैं कुछ भी करके फिर मैं परमात्मा के पास जाऊं, मैंने कर लिया, प्लीज फॉरगिव मी, वो फिर से वही प्यार मुझे परमात्मा से मिलता है। और टीचर से क्या मिलता है? आप सभी यहाँ प्रोफेसर्स और टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर से क्या मिलता है? ज्ञान, ज्ञान, समझ, है ना। परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा से वो ज्ञान मिलता है जो इंसानों से नहीं मिलता, यूनिवर्सिटीज और स्कूल से नहीं मिलता। वो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, समय का ज्ञान, जीवन को जीने का ज्ञान परमात्मा से प्राप्त होता है। और चौथा संबंध है सद्गुरु का संबंध। सद्गुरु कहे, गाइड कहे, सद्गुरु के पास कब जाते हैं? तो कोई कोई जीवन के लिए रास्ता तब चाहिए होता है गाइड के रूप में, है ना। परमात्मा हमारा सद्गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है सद्गुरु। वो सद्मार्ग दिखाने वाला, सदगति देने वाला परमात्मा है। उनसे पवित्रता की शक्ति भी मिलती है, सद्गुरु से पवित्रता की शक्ति भी मिलती है, है ना। और पांचवा संबंध है फ्रेंड का संबंध, आई थिंक इस छठा संबंध है, छठा संबंध है फ्रेंड का संबंध। फ्रेंड भले हम किसी के साथ जो भी शेयर नहीं करते, लेकिन फ्रेंड के साथ तो हर चीज हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक ही वेवलेंथ है, उसको वो मुझे समझते हैं, है ना। तो पर खुदा को दोस्त बना के देखिए, परमात्मा को दोस्त बना के देखिए। दिल के जो भी हाल है, छोटी छोटी चीजें जब आप परमात्मा के साथ शेयर करेंगे, आपके दिल को हील करना होना शुरू हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को ये भी कहते हैं वो कंफर्टर ऑफ हार्ट्स, दिल को सुकून देने वाला परमात्मा है, दिल को हल्का करने वाले। हर जो कई बार लगता है ना, वो तो सर्वोच्च है, मैं छोटी छोटी चीजों को जाकर के उसको क्यों कैसे बोलूं, मेरे पास उनके थोड़े थोड़ी उनके पास इतना टाइम, मतलब उनको थोड़ा बहुत लगता है कि मैं तो इतनी छोटा इतना छोटा हूं और इतने ऊंचे है वो, मैं छोटी छोटी चीजें थोड़ी जा करके बोलूंगी। नहीं, बोलना चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए। हर चीज जब हम परमात्मा के साथ शेयर करेंगे तो आपका दिल हल्का रह सकते हैं और आपका दिमाग बहुत बर्डन फ्री रहेगा। तो जितना हो सके आप शेयर करना सीखे, तो वो नॉन जजमेंटल होने के कारण से हमें गाइडेंस भी मिलना शुरू हो जाता है फ्रेंड के संबंध से। और फिर नेक्स्ट संबंध है स्वामी का संबंध, साजन का संबंध, एक प्यार का संबंध जो मीरा ने गिरिधर गोपाल के साथ संबंध जोड़ा था। तो जो भी विघ्न आए उनको बहुत सहज रूप से वो पार करती गई उस संबंध के आधार से। तो ये सारे संबंध जो भी आप जोड़ सकते हैं वो जोड़ते चले, क्योंकि इमोशंस जुड़ने के कारण से वो बहुत सहज लगने लगता है, भारी नहीं होगा। ये है सेकंड स्टेप, है ना। पहला स्टेप था परिचय, नेक्स्ट स्टेप है संबंध। सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करना। और तीसरा स्टेप है स्नेह। भले संबंध जोड़े लेकिन स्नेह को गहरा कैसे करें, स्नेह को डीपन कैसे करें। जैसे सूर्य के आगे, अगर सूर्य के नीचे अगर पेपर रखते हैं, सालों साल अगर रखेंगे तो भी वो जलता नहीं है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और फोकल पॉइंट पर उस पेपर को रखा तो कुछ ही मिनटों में वो पेपर जलने लगता है। क्यों? सालों साल वो पेपर धूप में रखा फिर भी वो जली नहीं, लेकिन फिर जैसे ही वो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे रखा वो कुछ ही मिनटों में जलना शुरू हुआ। इंटेंसिफाई फोकस, सारे जो रेज है वो फोकस एक पॉइंट पर वो फोकस होने लगे, तो इकट्ठा होकर के फिर वो पावर जनरेट हुआ, इसके कारण से वो जलना शुरू हुआ। कॉन्सेंट्रेशन है ना, जैसे सागर में ऊपर तैरना बहुत अच्छा लगता है, सर्फिंग करना भी अच्छा लगता है, तो वो जैसे ऊपर परिचय के आधार से जो मनन चिंतन करते हैं वो सर्फिंग हो गया, लेकिन जब डीप डाइव करते हैं सागर के डीप डाइव, सागर में जब डीप डाइव करते हैं तो वह एकदम शांति होती है, राइट? भले हमने किया नहीं होगा लेकिन फिर कई पिक्चरों में इसमें देखा, तो फिर वो लोग महसूस करते हैं वो डीप डाइव करने से एकदम सुकून शांति, परमात्मा के प्यार में डूब जाना, फिर उसको लगता है एकदम जैसे शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, वहां कोई हलचल नहीं है, वहां स्थिरता है। कॉन्सेंट्रेट करना, एकाग्र करना फिर इजी हो जाता है जब प्यार है ना? जिसके प्रति प्यार है उनकी यादों में जब डूबे हुए होते हैं, है ना? उनकी यादों में जब डूबे हुए होते हैं तो आसपास कोई भी व्यक्ति आए गए पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, आंखें खुले हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी देखा अनदेखा हो गया, क्योंकि यहां किसी की याद, वो एकाग्रता है ना, वो एकाग्रता परमात्मा के साथ हमें डेवलप करने की जरूरत है। वो प्यार, वो स्नेह कैसे जागृत करें परमात्मा के प्रति, वो तो प्यार का सागर है, वो तो हमेशा हमें 24/7 वो दे ही रहे हैं, कंटिन्यूस दे रहे हैं, आप उनको पहचाने न पहचाने, कनेक्शन जोड़े न जोड़े, जैसे मोबाइल के टावर से लगातार वो रेज निकलते हैं, वो मोबाइल कनेक्ट हो या न हो, ऐसे परमात्मा भी निरंतर प्यार दे रहे हैं, मैं कनेक्ट हो या ना हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है अभी मैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाऊं, है ना? तो परमात्मा के प्रति प्यार कैसे जागृत करें, आप क्या कहते हैं? वो तो दे ही रहे हैं, प्यार का सागर है, लेकिन अपने दिल में परमात्मा के प्रति प्यार कैसे जोड़े? प्यार जागृत करना है ना, प्यार कैसे जागृत करे परमात्मा के प्रति? समझ के आधार से समर्पित, वो तो लास्ट में आएगा, और लास्ट स्टेज आप कह रहे हो, तो पहले तो समझे इसको। हाँ, स्पेंडिंग मोर टाइम, जैसे जैसे मैं ज्यादातर टाइम परमात्मा को याद करने की कोशिश करती हूँ, तभी भी हम मेरा प्यार बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात है, प्यार तब बढ़ता है जब मैं ये महसूस करती हूँ परमात्मा मेरे लिए क्या क्या कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से क्या क्या मुझे प्राप्तियां हो रही है, तब प्यार बढ़ता जाएगा। निस्वार्थ है ना उनका प्यार, हम कोई ना कोई स्वार्थ को लेकर के हम उनको याद करते हैं, निस्वार्थ रूप से मैं भी याद करूं ना, क्योंकि अभी तक कोई भी जब भी याद करते हैं स्वार्थ के आधार से भी ज्यादा होता, तो इसीलिए स्नेह को बढ़ाने की जरूरत है। स्नेह जितना जितना बढ़ता जाएगा एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, और नेक्स्ट लेवल है जो मिल रहा है प्राप्ति की अनुभूति, जो परमात्मा से प्राप्तियां क्या क्या हो रही है, तो वो जब हम अनुभव करना शुरू करते हैं तभी भी वो फिर जो स्नेह है बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां हम प्राप्ति को गिनने जाएं तो क्या क्या प्राप्तियां होती है परमात्मा से? हम मांगते हैं चने, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन परमात्मा के सामने जाकर के मांगते क्या है? मांगते क्या है? हे भगवान, मुझे नौकरी दिला दो, बंगला दिला दो, गाड़ी दिला दो, स्वस्थ कर लो, मेरे फैमिली मेंबर का ये हुआ है इसको ठीक कर दो, मेरा संबंध बिगड़ रहा है इसको ठीक कर दो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को हम मांगते हैं, है ना? है कि नहीं? और जब मांग रहे होते हैं किस रूप से मांगते हैं? अगर ये काम हो जाए तो क्या करेंगे? 1001 दिया जलाएंगे, 1,00,000 रुपया देंगे, या ये इतना नारियल फोड़ेंगे, इतना ये करेंगे। काम हो गया तो कंडीशंस, है ना? परमात्मा को आपको आपका जो 1,00,000 रुपये की जरूरत है, आपको 101 नारियल की जरूरत है, 1,000 दिए की जरूरत है, वो तो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला, पूरी दुनिया के अन्नदाता, शक्ति देने वाला, तो उनको हम दिया दिखा रहे हैं अपने ही स्वार्थ, है ना? दे या ना दे, मैं तो दूंगी, वो नहीं, देंगे तो मैं ये देंगे, ये कंडीशन नहीं है, है? फैमिली मेंबर्स, जिसके आपके बच्चे हैं, माता पिता है, कंडीशन है क्या कि आप ये करोगे तो मैं ये करूंगी? नहीं, कंडीशंस होना ही नहीं चाहिए परमात्मा के साथ, क्योंकि वो मेरे हैं, है ना? आप दे या ना दे, मैं देती जाऊं, वो तो दे देंगे ही, लेकिन हम कंडीशंस डालते हैं कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो इसके बजाय आज क्या करना है? नो कंडीशंस एट ऑल, सब कंडीशंस को निकाल के केवल ये याद करे और देखना कि अनकंडीशनल प्राप्तियां होंगी, अनलिमिटेड, बेहद की प्राप्तियां आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हम इंसान की बुद्धि है ना, बहुत लिमिटेड है, इसके कारण से हम सोचते मुझे ना ये, मुझे लगता है कि ये मिलने से मुझे मेरे जीवन में खुशी आएगी, लेकिन बिगर पिक्चर किसको पता है? बिगर पिक्चर तो परमात्मा को पता है, मुझे क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या अच्छा है उसको पता है, है ना? तो इसीलिए उसको छोड़ के ये सोचे, लेट द बेस्ट हैपन, जो मेरे लिए बेस्ट है वो हो जाए, कोई भी कंडीशंस नहीं है, ये चाहिए वो नहीं, जो मेरे लिए बेस्ट है, हमेशा ये सोचे, जो बेस्ट उनके लिए भी, जो बेस्ट है सबके लिए वो हो जाए, तब वो खुल जाएगा दरवाजा, है ना? तब प्राप्तियों का भोचार आप देखें, कितना अनुभव परमात्मा से अनुभव कर सकते हैं, है ना? कंडीशंस निकाल करके अनुभव करने की कोशिश करें। तो ये 4 स्टेप्स है, और मेडिटेशन करते समय भी इनको यूज करते हुए 4 स्टेप्स करते हैं। सब मेडिटेशन करते समय सबसे पहले है मनन चिंतन करना। जब आप बैठते हैं पहले मनन चिंतन माना सोचना शुरू करते हैं, विड्रॉ, सबसे मन बुद्धि को विड्रॉ करते हुए आत्म चिंतन करना शुरू करते हैं कि मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं, गुणों को याद करते हैं, शक्तियों को याद करते हैं, रूप को याद करते हैं, याद करते हुए उसको अनुभव, मनन चिंतन, उसमें थॉट्स चलते हैं, जो बाहरी थॉट्स है वो सभी विचारों से अपने आप को समेटते हुए आत्मचिंतन के ओर जाना, वो है मनन चिंतन, आत्मचिंतन पहला स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप जो संबंध जोड़ना, वो कनेक्शन जो जोड़ते हैं, परमात्मा को याद करना, सेकंड स्टेप है ना। परमात्मा जो है जैसे है और उनके साथ मेरा संबंध क्या है, ये कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं सेकंड स्टेप में, मेडिटेशन के सेकंड स्टेप में। सर्व संबंधों के आधार से, गुणों के आधार से, शक्तियों के आधार से, इन दो स्टेप्स में विचार चलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से अगर बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। वहां गैप आप नहीं रख सकते, आप मन को शून्य नहीं रख सकते। मन को शून्य रखेंगे तो जो नेगेटिव सोचने की आदत है, वे सोचने की आदत है, वो फिर से वो विचार आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वो पॉजिटिव सोचना, स्वचिंतन और परमात्मा चिंतन करना बहुत जरूरी है ना। पहले मनन चिंतन, आत्मचिंतन में आत्मचिंतन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में परमात्मा चिंतन करेंगे कनेक्शन जोड़ते हुए, और थर्ड स्टेप में फिर एक कोई संबंध, एक कोई गुण और एक कोई शक्ति लेते हुए उसमें स्थिर होंगे कुछ मिनटों तक। कुछ मिनट स्थिर होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। स्टार्टिंग में आप केवल एक मिनट के लिए आप उस गुण में या उस संबंध में स्थिर हो सकते हैं, फिर चेंज हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते एक गुण में भी या एक संबंध में भी अगर 5 मिनट भी स्थिर हो गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कॉन्सेंट्रेशन पावर। क्योंकि उसमें स्थिर होना क्यों जरूरी है, क्यों आप मनन चिंतन या फिर वो संकल्प चलाते रहे, क्यों नहीं वो करते रहना है, क्योंकि जो ऊपर जैसे बारिश जब होता है ना, जोर से बारिश होकर के एकदम रुक गया तो वो पानी अब्सॉर्ब नहीं होता है ना। धीरे धीरे से लंबे काल तक वो बारिश हुई तो फिर वो मिट्टी के अंदर पानी अब्सॉर्ब होना शुरू होता है, स्थिरता। जब माइंड एक शक्ति में स्थिर हो जाता है, फिर हम उस गुण को या शक्ति को अब्सॉर्ब करना शुरू करते। बहुत तुरंत तुरंत चेंज कर रहे हैं, अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। तो अब्सॉर्ब करना, एकाग्रता बहुत जरूरी है थर्ड स्टेप में। जब एकाग्र होकर के फिर वो अनुभव करना शुरू करते हैं, लास्ट स्टेप है प्राप्तियों की अनुभूति। वहां फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अनुभव होना, प्राप्ति की अनुभूति होना वहां से करना हो गया है ना। तो वो चार स्टेप्स अगर हम करेंगे, आप देखेंगे फिर आधा घंटा भी आप प्रैक्टिस मेडिटेशन करके जब उठते हैं तो आपका चेहरा बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि आत्मा उस प्राप्ति को अनुभव की होती है। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए वो हुआ आंतरिक, जो अंदर जो करना है, सोचना है मेडिटेशन करते हुए, इसके बारे में हमने समझा। लेकिन फिजिकल अरेंजमेंट्स क्या होनी चाहिए मेडिटेशन करने के लिए, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले यहां सुखासन में आप बैठ सकते हैं, कोई भी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको पद्मासन में ही बैठना है या फिर पर्टिकुलर पोस्चर की जरूरत है, नहीं। चेयर पर भी आप आराम से बैठ सकते हैं, अगर नीचे पट पर बैठते हैं सुखासन, अगर आप फोल्ड कर सकते हैं अपने पैरों को वो भी पोजीशन अच्छा है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठते हैं दोनों जो पैर हैं वो जमीन पर ऐसा होना चाहिए, क्रॉस्ड या ऐसे ऐसे ना हो, पूरा लेग्स पैर सीधा हो और ग्राउंड को टच करते हुए कोई ऐसा, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं एनर्जी फ्लो होती है, तो अगर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है तो वो अनुभव के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए फ्रीली आपको बैठना है, क्योंकि अगर हम आपको कहे कि पद्मासन में ही बैठना है तो क्या होगा, आजकल हेल्थ सभी का एक जैसा नहीं है, तो अगर पद्मासन में बैठे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, बुद्धि कहाँ जाएगा, जहां पेन है वहां जाएगा, हम शरीर से डिटैच होने के बजाय देह भान में फंस जाते हैं, यह दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द के तरफ मेरी बुद्धि होगी और डिटैचमेंट नहीं आएगा। इसलिए शरीर से डिटैच होने के लिए शरीर को आराम देना जरूरी है और अलर्ट भी रखना जरूरी है, दोनों बैलेंस हो, ऐसा नहीं कि केवल ओवर रिलैक्स्ड हो गया बॉडी, ऐसा ना हो कि फिर निद्रा अवस्था में चला गया, है ना, ओवर रिलैक्स हो जाएगा तो फिर वो अलग ही प्रकार की शांति अनुभव करेंगे, फिर कहेंगे अगर पूछते हैं कैसा रहा अनुभव, कहते बहुत शांति की अनुभूति रही। वो कौन सी शांति थी, योग की शांति नहीं है, वो निद्रा अवस्था की शांति होगी, है ना, तो वो अलग प्रकार की शांति की अनुभूति होगी। तो इसीलिए अलर्ट भी रहना है लेकिन एकदम रिलैक्स, पूरा रिलैक्स नहीं लेकिन पेनफुल ना हो वो ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें ये बैकबोन अगर स्ट्रेट रहे तो फिर और अलर्ट रूप में हम वो मेडिटेशन कर सकते हैं। और आंख, इस मेडिटेशन को हम ओपन आई मेडिटेशन कहते हैं, आंखों को हम यूजुअली सजेस्ट नहीं करते हैं आंखों को बंद करने के लिए, आंख खोल करके मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये कर्म योग भी है, राजयोग कर्म योग भी है, क्योंकि कर्म करते समय भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बैठने पर भी पर ही आप योग करें, नहीं, कर्म योग भी कर सकते हैं। आप कर्म कर रहे हैं, किचन में भोजन बना रहे हैं या कुछ ऐसे जहां बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, मन बुद्धि इतना इन्वॉल्व नहीं है, आप वॉकिंग कर रहे हैं या बस स्टेशन के लिए जा रहे हैं, जब बुद्धि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, केवल बॉडी शरीर से आप कर्म कर रहे हैं, वहां योग करना, कनेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना इजी हो जाता है। और आप लोगों ने सबने किया हुआ है, कर्म करते समय अपने फैमिली मेंबर्स को याद कर सकते हैं ना, माँ को याद किया होगा, पिता को याद किया होगा, बच्चों को याद किया होगा, कर्म करते समय याद ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, वही कनेक्शन है, वही योग है, है ना, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दिया तो फिर कर्म करते समय भी परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वहां प्यार है, वहां स्नेह है, वहां संबंध है, है ना। इसीलिए जब कर्म करते समय आंखों को तो खुला रखना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते कर्म करते समय, तो इसीलिए जब बैठ करके आप मेडिटेशन करते हैं ये अभ्यास करें कि ओपन आई, आंखों को खोल करके मेडिटेशन करने की आदत डालने की जरूरत है। और दूसरा रीजन ये है, यहां बताया जाता है दृष्टि में शक्ति है, है ना। जब भी हम महात्माओं को घर बुलाते हैं तो कहते हैं आप आशीर्वाद दो, एक है एनर्जी का फ्लो हाथों से होता है और दूसरा है पैरों से एनर्जी फ्लो होता है, कहते हैं आप अपने घर में एक बार पैर रख के जाइए, अपने घर को शुद्ध करके जाइए, है ना। क्यों महात्माओं को बुलाते हैं घर, क्योंकि लगता है कि उनके आने से, उनके कदम पड़ने से हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, एनर्जी फ्लो पैरों से भी होता है लेकिन पावरफुल इन दोनों चीजों से भी पावरफुल है दृष्टि, है ना। इसीलिए यहां ब्रह्म कुमारी में हम ये कहते हैं पैर छूना नहीं है लेकिन दृष्टि लेना है। हम कभी भी आपने देखा पैर छूते हुए किसी के? नहीं, है ना। कोई भी बड़ा छोटा नहीं, हाँ सीनियोरिटी के हिसाब से रेस्पेक्ट तो है, हर एक आत्मा के प्रति रेस्पेक्ट है, सम्मान है, लेकिन फिर दृष्टि, दृष्टि का लेन देन करना बहुत जरूरी। दृष्टि के लेन देन करने से क्या होगा, आत्मिक दृष्टि पावरफुल होता जाएगा, है ना। आजकल इतने सारे क्राइम दुनिया में, गलत चीजें क्यों हो रहा है? बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण से इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, जो काम विकार वश जो गलत कर्म हो रहे हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस। तो दृष्टि वो उसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। किसको भी देखे, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, ओरिजिनली कौन है? आत्मा है, आत्मा है। आत्मिक दृष्टि पक्का करने के लिए आंखों को खोल करके रखना बहुत जरूरी है, है ना। तो इसीलिए ओपन आई मेडिटेशन करने से बहुत सारे प्राप्तियां हैं। एक है सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक दृष्टि बढ़ता है, कर्म योग करने के लिए वो मदद मिल जाता है, है ना। तो इसलिए ओपन आई। और आंखों को खोल के भी रखना है तो कैसे रखना है, जैसे योगियों के चित्र को देखा होगा, हाफ ओपन, पूरा ओपन नहीं है, हाफ ओपन रखना है। हाफ ओपन माना मुझे नजर आ रहा है लेकिन नजर आते हुए भी मेरा ध्यान वहां नहीं है, ध्यान मेरा अपने तरफ है, भले मैं देख रही हूं लेकिन देखते हुए भी मेरा अटेंशन अपने तरफ है, है ना। देखते हुए नहीं देख रहे हैं, देखते हुए वो रजिस्टर नहीं हो रहा है ना, वो आगे की। लेकिन भल अगर आपको मुश्किल लगता है आंखों को खोल करके मेडिटेशन करने के लिए, बीच बीच में आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट ये करते हैं तो लंबे काल तक आप बंद करके ना रखें, एक मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए बंद भी रखा लेकिन फिर खोल दीजिएगा। क्योंकि बंद करने से क्या होगा कि बंद करते ही मन बुद्धि को भटकना बहुत इजी हो जाएगा। आप करके देखिए, आंख बंद करते ही इस हॉल से मन को बाहर जाना बहुत इजी हो जाएगा, बंद करते ही घर में पहुंचना या कहीं और पहुंचना इजी हो जाता है। तो इसलिए लंबे काल तक आप बंद करके ना रखें, बीच बीच में खोले, बीच बीच में बंद कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्स्टेंटली खोल करके रखना मुश्किल हो रहा हो तो। नहीं तो फिर जो भी कंफर्टेबल है उस रीति से आप करेंगे, ठीक है। और समय कौन सा है मेडिटेशन करने के लिए, दिन भर आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम मेडिटेशन करने के लिए अमृत वेला योग। सुबह अमृत वेला तो 2 बजे से शुरू हो जाता है, सुबह 2 बजे से, लेकिन फिर हर एक को वो प्रैक्टिस नहीं है इतना जल्दी उठना, तो इसीलिए ऑफिशियली 4 to 4:45 अमृत वेला मेडिटेशन आप करें। तो क्योंकि अमृत वेले में के टाइम पे, उस टाइम पे कम मेहनत में ज्यादा प्राप्तियां हो सकती है। क्यों? एक है सारी रात की नींद के बाद ब्रेन एकदम फ्रेश रहेगा, और फिर दूसरी बात कि जैसे ही आप उठते हैं मन, चेतन मन एक्टिवेट नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे सुबह आप कार को स्टार्ट करते हैं, पहले इंजन को गर्म करते हैं, फिर फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर सेकंड गियर में, स्टार्ट करते ही चौथे गियर में नहीं डालते हैं, राइट। धीरे 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 ऐसे ही जब हम उठते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, है ना, एकदम उठते ही आप भागना नहीं शुरू करेंगे, अनलेस एंड अंटिल बहुत लेट उठे हो तो, भागना हो तो, है ना। तो धीरे से उठेंगे, थोड़ा बैठेंगे, फिर ये करेंगे। तो उस टाइम पे जो चेतन माइंड मन है या कॉन्शियस माइंड है कंप्लीटली एक्टिव नहीं है। तो उस टाइम पे जैसे उठने के एक्चुअली कहते हैं एक घंटा, लेकिन हम कहते हैं 20 मिनट। उठने के बाद 20 मिनट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। उस टाइम पे आप रिलैक्स होकर के परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें, तो सबकॉन्शियस माइंड को वो एनर्जाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे संस्कार, लंबे काल से जो बहुत कर्म करते गए हैं, रिपीटेड कर्म करते गए हैं, और रिपीटेड कर्म संस्कार बन गए, है ना। संस्कारों को अगर परिवर्तन करना है, अमृत वेला मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल। अगर किसी भी कारण से अमृत वेला नहीं उठ पाते हैं, जब भी आप उठे, लेकिन सूर्योदय से पहले, है ना, तो उठ करके 20 मिनट्स आप मेडिटेशन करें, वो बहुत सारे दिन के लिए जैसे आत्मा चार्ज हो गई, है ना। और नेक्स्ट बेस्ट टाइम है शाम का योग, 6:30 से 7:30 के बीच का टाइम जो है वो नेक्स्ट बेस्ट टाइम माना जाता है मेडिटेशन के लिए। उसी टाइम पे सभी जो पूजा के जो भी प्रेयर्स के स्थान है वो मंदिरों में देखे, आरती का टाइम होता है ना। तो शाम के टाइम पे भी वो पावरफुल टाइम, जब सूर्यास्त के टाइम होता है, तो वो भी पावरफुल टाइम है मेडिटेशन करने के लिए। और तीसरा बेस्ट टाइम है सोने से पहले, क्योंकि सोने से पहले मेडिटेशन करके आप सोएंगे और जैसे मन को पूरा खाली किया, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ा, फिर सोए, आप देखेंगे कम समय पर कम नींद किया लेकिन पूरा रिफ्रेश हो जाएंगे, है ना। तो ये तीन टाइम आप जरूर थोड़े थोड़े के समय के लिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है मेडिटेशन को लेकर के आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम योग करेंगे। कोई और प्रश्न है? मेडिटेशन से कनेक्टेड जब ये स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो फिर मन भटकता नहीं है। जो मैंने स्टेप्स बताया अभी, है ना, जो 4 स्टेप्स इसके और जो मेडिटेशन की विधि है वो 4 स्टेप्स है। कौन कौन से 4 स्टेप्स है, रिवाइज करें। सबसे पहले परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, और उसके रिलेटेड मनन चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, फिर एकाग्र हो जाए उसमें, फिर प्राप्तियों की अनुभूति होगी। ठीक है, ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे तो जरूर मन, क्योंकि मन भटकता क्यों है, क्योंकि इतने साल आप कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, आप भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तुरंत हो जाएगा। आप मान लीजिए आपके बच्चे हैं, बचपन से आपने उनको पूरी छूट दे दी, जो करना है बेटा कर लो, कोई कंट्रोल नहीं किया, कोई शिक्षा सावधानी नहीं दी, पूरी छूट दे दी, 18-20 साल के बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे, कंट्रोल हो सकता है? मुश्किल है ना। कंट्रोल होगा लेकिन फिर ज्यादा मेहनत लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसे ही बचपन से लेकर के अभी तक हमने मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, उनको दिशा देने की कंट्रोल ही नहीं कोशिश ही नहीं की। अभी जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर कहेंगे कि ये नहीं सोचो, ये सोचो, ये नहीं करो, वो करो, तो फिर थोड़ा सा नहीं, इतना इजीली नहीं हो पाएगा। तो लेकिन प्रैक्टिस मुश्किल नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, वो प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगी आपको, ये अभी केवल मैं प्रश्न वही उन्हीं प्रश्नों को ले रही हूँ मेडिटेशन के संबंध में, है ना। आपके प्रश्न मैं लेती हूँ बाद जी। मेडिटेशन करने के लिए कोई और ये है? हाँ जी, क्योंकि हाँ होता है, होता है हम, ठीक है, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राइट मेथड से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेडिटेशन रूम में बैठे हैं, यहाँ वहां का वातावरण इतना पावरफुल है, राइट, और वहां बैठ करके आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया है, ये है, वो है, सारा नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या होगा? वो एम्पलीफाई हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचिए, वह एम्पलीफाई होगा, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी उस स्थिति में जा रहे हैं मेडिटेटिव स्टेट में। मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे दिल से बददुआएं निकल रही है ना उस अनात्माओं के प्रति जिसने मुझ मेरे साथ गलत किया या फिर दुख दिया, जो भी है नेगेटिव वाइब्रेशंस, वो एम्पलीफाई होगा। तो इसीलिए जितना हो सके उसको कम करके अपने माइंड को डिविएट करना है नेगेटिविटी की तरफ से, वेस्ट से पॉजिटिविटी की तरफ। कभी भी कर सकते हैं, मैंने वैसे कहा दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दिन में अगर करते हैं तो क्या होता है, डिटैचमेंट, डिटैच होने का अभ्यास नहीं है ना, डिटैच होने का अभ्यास नहीं है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं। इसलिए यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल क्यों रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल मना एक डेढ़ घंटे के बीच में फिर वो गीत बजता है ना, वो डिटैच होकर के फिर से परमात्मा के साथ कनेक्शन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना इन्वॉल्व ना हो जाए तो ताकि फिर ये कनेक्शन ना कर पाए, है ना। बीच बीच में आप अभ्यास करें, डिटैच होने का अभ्यास करें बहुत, क्योंकि डिटैच होने से क्या होगा, आप देखेंगे आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत जल्दी आपको नजर आने लगता है। जैसे एक मिसाल है, एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक यहाँ आए थे वो कोई प्रोग्राम में, उन्होंने सोचा कि मैं ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास जरूर करूंगा 8:30 10:30 इन द मॉर्निंग 12 o'clock जो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हमारा होता है वो मैं जरूर फॉलो करूंगा। तो अपने कैबिन में बैठे थे और फिर 12 बजा तो कोई और विजिटर आने वाले थे, उनको से मिलने के लिए उनको बोला कि 3-5 मिनट आप रोको, 5 मिनट के बाद वो आए मिलने के लिए। फिर वो मेडिटेशन किया, जो ट्रैफिक कंट्रोल का 3 मिनट का मेडिटेशन होता है, 3 मिनट मेडिटेशन किया और फिर जो जो व्यक्ति आने वाला था वो प्रॉब्लम को ले आने वाला था और उनको पता है ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है वो सोच रहे थे। जैसे ही डिटैच होकर के परमात्मा को याद की और फिर मेडिटेशन पूरा किया, जब वो व्यक्ति आए तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके दिमाग में आ गया कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है। तो बीच बीच में डिटैच होना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि पूरी तरह इन्वॉल्व होने से मुझे सोल्यूशन मिलेगा, कभी कभी बीच में डिटैच होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के पूरा जैसे ओवरव्यू मिलता है, सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। डिटैच होने का अभ्यास करें बीच बीच में। पूरी तरह जब बैठते हैं उस रीति का कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, कर्म करते समय डिटैच होना, लेकिन 50% हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह बैठ करके जब आप करते हो तो 100% कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। उस लेवल का कॉन्सेंट्रेशन कर्म करते समय नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट 50% तो है। मेडिटेशन सॉन्ग के साथ आपको करना है, कमेंट्री के साथ आपको करना है, कर सकते हैं। क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हेल्प चाहिए होता है, क्योंकि खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं, खुद वो सद्विचार नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई मदद से वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट ना बने। अगर सॉन्ग नहीं बजेगा तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, रेड लाइट नहीं आएगा तो मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, बहन कमेंट नहीं कराएगी तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, नहीं, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये जो भी सपोर्ट है ये बिगिनर्स के लिए है ना। तो बाद में मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ पर्सनल होना चाहिए, किसी के ऊपर पर्सनल ये नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ कमेंट्री सुना उसको रट लिया, रट करके वही फिर रिपीट किया, ये कोई मेडिटेशन नहीं है। हा? क्योंकि मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए परमात्मा के साथ। हाँ जी, ये मेडिटेशन है ना एनर्जी के साथ है। परमात्मा हम ये मान रहे हैं कि वो प्रकाश का पुंज है, जैसे आत्मा ज्योति है परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, वो उस रीति से कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ समय के लिए अभी हम मेडिटेशन करें। सीधा बैठ जाए, बैक बोन्स सीधा रखें, और जो मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते हुए विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये तीन चीजें साथ साथ होगा, सोचना, विजुलाइज करना और महसूस करना, फील करना, साथ साथ करते चले। आसपास के वातावरण से, आवाजों से मन और बुद्धि को विथड्रॉ करते चले, अपने भ्रुकुटी के मध्य में फोकस करें। ब्रेन के बीचों बीच एक चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश का पुंज, अनादि अविनाशी, ये शरीर मेरा वस्त्र है जिसको धारण कर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। प्रकृति के मध्य में बैठकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूँ, लेकिन करने वाली मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। मैं मुझ आत्मा का गुण शांति, शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकदम परमात्मा के सानिध्य में ले जाती हूँ। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, मेरा घर सुपरमात्मा का घर। मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में देखती हूँ, परम धाम में। मुझ आत्मा का पिता रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, सागर है, अथाह है। सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वशक्तिमान मेरा पिता, मैं आत्मा उनके अति प्रिय सत्ता। इस एक संबंध और गुण में स्थित हो जाए कि परमात्मा मेरा पिता, मुझ आत्मा का पिता है। सर्वशक्तिमान उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा सर्वशक्तियों के किरणों को अब्सॉर्ब कर रही हूं। अब्सॉर्ब करते हुए बहुत लाइट होती जा रही हूं। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मुझ आत्मा की कमी कमजोरियां नष्ट होता जा रहा है, भस्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। भरपूर महसूस करें, शक्तिशाली महसूस करें, अपने अंदर सर्व शक्तियों को भरते हुए वापस इस संसार में इस निश्चित देह में जो मेरा वस्त्र है उसमें पहुंचकर इस संसार में इन सर्व शक्तियों के प्रकंपनों को फैला रही हूं। निरंतर शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई हूं, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई, निरंतर परमात्मा से लेते हुए संसार को दे रही हूं। अपने मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति के द्वारा परमात्मा के सर्व शक्तियों के प्रकंपन फैला रही।